मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 10 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक मित्र अविनाश सिंह चौहान का जो नवीन नगर औरंगाबाद बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं आप सबको देनी होती हैं, खासकर जो नए स्टूडेंट आकर के जुड़ते हैं उनको। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन शनिवार यानी कि कल प्रेस क्लिपिंग्स आप सबको एज इट इज ही मिलती रहेंगी। और कल आपको एक साप्ताहिक प्रश्न वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, यह अभ्यास के लिए दिया जाता है। और थोड़ी सी ये भी कोशिश होती है कि इस तरह के प्रश्न बनाए जाएं, इस तरह के टॉपिक पर प्रश्न बनाए जाएं कि बाय द वे अगर मेंस में आप अपीयर हो रहे हों और आपने इसका अभ्यास किया हो तो उसका भी एक अतिरिक्त लाभ आपको मिल सके। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के तहत मैं आंतरिक सुरक्षा इस विषय पर आप सबको कुछ बातें बताना चाहूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों जब आप सिविल सर्विस के मेंस में पहुंचेंगे तो मेंस का जो उद्देश्य है, अगर आप मुख्य परीक्षा का उद्देश्य जाकर के पढ़ें अपने सिलेबस में, बकायदे यूपीएससी ने इसके बारे में बताया हुआ है, तो उसमें एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगी और वह यह है कि वे आपके एनालिटिकल माइंड को टेस्ट करना चाहते हैं कि आप में विश्लेषण करने की कितनी क्षमता है। और ये विश्लेषण भी कोई सामान्य नहीं, मतलब परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं और उनका आप विश्लेषण करके अपना स्टैंड ले रहे हैं, यानी कि अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, राइट। अभी कोविड की स्थितियां चल रही हैं, आप देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ भी रहे हैं, देख रहे हैं यानी कि आपने अपने आसपास देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, चैनल्स पर सुन रहे हैं, इस पर बहस भी हो रही है और इस पर एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, राइट। सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सबके लिए एक अच्छा अवसर है जब आप भी अपनी बात कहें, अपनी बात सोचें। यहां मैं थोड़े से टिप्स दे रहा हूं आपको कि आप अपनी बात कैसे सोचेंगे। जैसे अखबारों में ये बात कही जा रही है कि अब भारत जो है ना कोविड के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन चुका है, अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत है, इतनी बड़ी संख्या है, सबसे ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं अमेरिका के ब्राजील के बाद, इस तरह की बातें आप सुन रहे हैं, ठीक है। सच में अगर हम सीधे सीधे ये सुने कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा डर लगता है ना। लेकिन क्या सच में तीसरे नंबर पर हम पहुंच गए हैं, सच है? देखिए आंकड़ों की दृष्टि से सच है, बिल्कुल सच है, अमेरिका पहले नंबर पर है, ब्राजील दूसरे पर है, तीसरे पर अब भारत है, ये सच है, ठीक है। चलिए तीसरे नहीं तो चौथे पर होगा रूस होगा, इस तरह से आप देख लीजिएगा, उन आंकड़ों को आप देख लीजिएगा, मैं तो यहां आपको केवल एक मॉडल बता रहा हूं। लेकिन एक दूसरा सच भी है जो इससे बड़ा सच है, वो सच क्या है? वो सच ये है कि हमें इन बातों को बाकायदे एवरेज के आधार पर देखने की कोशिश करनी चाहिए। ब्राजील की कितनी आबादी है? ब्राजील की मेरी समझ से शायद 25 करोड़ की आबादी होगी, है ना, मैं अंदाजन एक बात बता रहा हूं। अमेरिका की कितनी आबादी है? 35 करोड़ की आबादी है। हमारी कितनी आबादी है? लगभग 135 करोड़ तो कहा ही जाता है, या पता नहीं, हो सकता है कि 140 करोड़ हो गए हो, लेकिन चलिए 135 करोड़ की आबादी है। तो आप देखें कि हमें अमेरिका हमसे 1/4 है, 25% वहां की आबादी है मोटे तौर पर। अगर हम ब्राजील को लेते हैं तो वो लगभग 1/6 है, 1/5, 1/6 है। तो अगर संख्या की दृष्टि से हम थोड़े से आगे भी हो जाते हैं तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तब जाकर के हम सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे। कल के रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा कि जब कोविड के बारे में बातें बताई जा रही थी तो इस पर जोर दिया गया कि सही स्थिति क्या है, और उस सही स्थिति में बताया गया कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, बहुत बेहतर स्थिति में हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में अभी जितने भी टेस्ट हुए हैं, प्रति 10 लाख पर 538 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि दुनिया का जो रेट है 16-17 गुना इससे ज्यादा है, राइट। अब जो न्यूज में है, चलिए हम सीधे सीधे उनको नहीं लेते हैं, स्वस्थ होने की जो हमारी दर है वो 62.08% हो गई है, जो बहुत अच्छी है, मृत्यु दर भी जो है वो 10 लाख में 15 है, जबकि दुनिया में इससे बहुत ज्यादा है। तो जो मृत्यु दर है, जो संक्रमण की दर है, जब हम दर की बात कहते हैं तो वो एवरेज आ जाता है, औसत आ जाता है, और औसत ही सही मायने में सही निष्कर्ष देते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि औसत से फिर एक दूसरी बात जुड़ जाती है। दूसरी बात ये जुड़ती है कि भाई ठीक है, अमेरिका की आबादी 35 करोड़ तो है, लेकिन वहां में से वहां उन आबादी का कितना प्रतिशत बकायदे उनका टेस्ट किया जा चुका है, ये भी मायने रखता है। हमने कितने परसेंट अपनी पॉपुलेशन को टेस्टेड किया है, उसके आधार पर भी फिर निकलेगा। तो मैं यहां देखिए आपको कोविड के बारे में कोई सूचना नहीं देने जा रहा हूं, कोई आंकड़े प्रस्तुत करने नहीं जा रहा हूं कि कितने गुना कितना है ना, आप इन चीजों को भूल जाइए। यहां मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपकी वो जो एनालिसिस है वो बकायदे वैज्ञानिक एनालिसिस होनी चाहिए, सतही एनालिसिस नहीं। केवल इसके माध्यम से मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा था। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था जो ग्लोबल मीट हो रहा था उसमें, और मैं लगातार आप लोगों को इसके बारे में सजेस्ट करता रहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी के इतने महत्वपूर्ण मंच पर भाषण हो तो आपको वह भाषण पूरा पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि वो पूरे के पूरे, आप यूं कह लीजिए, वो हमारी कंट्री की उपलब्धियों की बात होती है और एजेंडे की भी बात होती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस फिर उन्हीं सबसे निकल कर आते हैं। उसमें उन्होंने कुछ बहुत अच्छी शब्दावलियों का भी प्रयोग किया है कि मानव केंद्रित और समावेशीय नीति हम दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, भारत बहुत अच्छे सुधारकों में से एक है। तो अब आप इन सब के बारे में जब थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको एक दृष्टि मिलेगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको सोचने की आदत पड़ेगी। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी जो नीतियां हैं वो मानव केंद्रित होने के साथ साथ समावेशी भी है, अब आपको सोचना चाहिए कि भई ये मानव केंद्रित भी है और समावेशी भी है तो कहने का क्या मतलब है। ये केवल याद करने की चीज नहीं है, ये समझने की बातें हैं। तो थोड़ा सा इन सब पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, इस बात से हटकर कि आप सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं और किताबों में दिए गए तथ्यों को रटने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के तहत मैं आपसे आंतरिक सुरक्षा के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। और दरअसल इस विषय को मैंने चुना इसलिए है कि रेडियो न्यूज़ में आपने सुना है कि किस तरीके से जो बस्तर में है वहां 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। माओवादियों ने जो नक्सलाइट की प्रॉब्लम है, आप जानते हैं कि उधर छत्तीसगढ़ एरिया और आंध्र प्रदेश और उसमें थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है। माओवादी क्या होते हैं इसके बारे में मैं पहले बातें कर चुका हूं, तो आज मैं आपको आंतरिक सुरक्षा, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके बारे में कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं। देखिए, जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि एक देश की अपनी सीमाओं के अंदर सुरक्षा, भारत है, भारत की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंदर की हम सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, जब हम आंतरिक सुरक्षा करते हैं तो इस आंतरिक सुरक्षा के फिर कितने पार्ट होते हैं? क्या आंतरिक सुरक्षा एक शब्द है? नहीं। फिर जब हम आंतरिक सुरक्षा को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। पहला, हमें अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करनी है। अगर कोई भी हमारी सॉवरेंटी पर हस्तक्षेप करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, अभी हमारी आंतरिक सुरक्षा है। दूसरा है, हमारा देश है, हमारे देश की एकता और अखंडता है, हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे, और इसके विरुद्ध कोई भी यदि कार्य किया जाएगा तो हम उसे अपनी आंतरिक सुरक्षा के विरुद्ध मानेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि सांप्रदायिक दंगे, अब सांप्रदायिक दंगे ठीक है देश में हो रहे तो हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश की एकता को खंडित कर सकता है, तो ये हम आंतरिक सुरक्षा में लेंगे। अगर कहीं हमारे पूरे के पूरे देश के किसी हिस्से में अलगाववादी, मान लीजिए कि घटनाएं हो रही, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी होने लगती हैं, पंजाब पहले खालिस्तान की मांग को लेकर के कर रहा था, तो ये हमारे देश की अखंडता के विरुद्ध हो रहा है, हमारे देश को खंडित करने की कोशिश हो रही है, तो ये भी हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को दी गई एक चुनौती मानेंगे। और याद रखिए कि एक और बिंदु इसमें आता है, वह है देश में शांति, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना। हमारे देश में शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, यह आंतरिक सुरक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे कि अब नक्सलाइट को ले लीजिए, नक्सलाइट क्या कर रहे हैं? कानून और व्यवस्था की स्थिति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, लॉ अपने हाथ में लेते हैं, मारकाट मचा रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो इससे शांति भंग हो रही है और कानून व्यवस्था भंग हो रही है ना, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो उसे भी हम बकायदे अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती के रूप में लेंगे। तो ये तीन बिंदु हुए जो आपको आंतरिक सुरक्षा की तैयारी करते समय लेकर चलना होगा। तो फ्रेंड्स, अब जब आप इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के और अपने देश के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में तैयारी करेंगे तो उसमें फिर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और जो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो ये है कि हमारी इस आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां क्या हैं। आपको मुख्य चुनौतियों पर, जो मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उन मेजर सिक्योरिटी कंसर्न पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और यहाँ चूंकि इतना वक्त नहीं है कि मैं उन मेजर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बता सकूं, और आधे अधूरे बताने का कोई विशेष अर्थ नहीं है मित्रों, तो कभी हम लोग इस इशू पर और बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं ये आपको जरूर सतर्क करना चाहूँगा कि जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, उसमें कम से कम ये देखा गया है कि जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो सिक्योरिटी से होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक से होते हैं। इसीलिए आपको पूरी गंभीरता के साथ इस विषय की तैयारी करते रहनी चाहिए। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका ज़्यादातर संबंध चूंकि करेंट अफेयर्स से होता है, इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार इस बारे में जो घटनाएँ घटित हो रही हैं उनके संपर्क में रहें। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है अंकित राज, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं समाप्त करना चाहूँगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सब अपना ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, एक्टिव रहें, बकायदे जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं कोरोना को लेकर के उनका एक पूरे आप यूं कह लीजिए कि ईमानदारी के साथ पालन करें। मेरा अभिवादन और शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।